मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 7 जुलाई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथी मित्रों स्वागत करता हूं अपने उन एक विशेष नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन मित्र का नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैं जनसंख्या वृद्धि दर पर कुछ आप लोगों से बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले आइए कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। मेरी समझ से पहली घटना कौन सी होगी इसका अनुमान आप सबको लग ही गया होगा। हालांकि कोई बहुत ही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण घटना नहीं है, लेकिन भारत और चीन के बीच अभी जो गतिरोध और तनाव दोनों की स्थितियां बनी हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए यह घटना जरूर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। पड़ाव कहने का मतलब है कि न तो ये शुरुआत है और न ये समाप्ति है। समाप्ति की यात्रा के बीच का एक आप कह लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन है और वह स्टोन यह है कि भारत और चीन के बीच जो बातचीत हुई है उस बातचीत में अब यह निर्णय लिया गया है कि जो सेनाएं दोनों अपने अपने क्षेत्र से आगे दूसरे की ओर खिसक गई हैं बढ़ गई हैं वो अब पीछे हटेंगी, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे दोनों तरफ की सेनाएं पीछे हटेंगी। और रिपोर्ट यह भी आ रही है कि चीन की सेना ने पीछे हटना शुरू भी कर दिया है, या यूं कह लीजिए कि चीनी सेना जो गलवान घाटी में अपने तंबू गाड़ चुकी थी उसने अपने तंबू उखाड़ लिए हैं और 2 किलोमीटर वह पीछे हटने लगी है। और इस तरीके से एक रिपोर्ट यह भी है कि देखिए 2 किलोमीटर भारत पीछे हट गया, 2 किलोमीटर चीन पीछे हट गया, तो टोटल मिला दीजिए तो 4 किलोमीटर हो गया। तो ये जो 4 किलोमीटर का बीच का जो क्षेत्र है यह नो मैन्स लैंड बन गया है। तो एक अच्छा डेवलपमेंट है भारत और चीन के संबंधों के बीच में जो कड़वाहट आ गई थी। देखिए शायद अब उस कड़वाहट का जो कड़वापन है थोड़ा सा कम होना शुरू हो। मित्रों एक खबर आप लोगों ने अखबारों में यह भी पढ़ी कि जो हमारे स्मारक हैं खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको ओपन कर दिया गया है पर्यटन के लिए और एक बहुत ही आप ये कह लीजिए कि स्वागत योग्य कदम है। इससे अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में भी रिवाइवल आएगा। इससे पहले के अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ के लगभग 60% उद्योग अब ऐसे हो गए हैं जिनमें 50% की रफ्तार से प्रोडक्शन शुरू हो गया है। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां तक पर्यटन का सवाल है तो मित्रों भारत की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का 2 दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण रोल है। पहला तो यह है कि देखिए हम जब भी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो पहली बात यह आती है कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, हमारे पास पूंजी नहीं है। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा 4-5 दिन पहले हमारे मंत्री गडकरी जी ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था में गति लाने के लिए 50-60 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है, 50-60 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है। तो इसे स्पष्ट होता है ना कि हमारे यहाँ कैपिटल की कमी है। और ये जो पर्यटन है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बहुत कम धन से बहुत ज्यादा रोजगार देती है। धन इसमें कम लगता है लेकिन ये रोजगार बहुत ज्यादा प्रोवाइड करती है। और भारत में भी रोजगार की क्या स्थिति इसे आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। यहां मैं 2 आंकड़े इसी बहाने आपके सामने रखना चाहूंगा और ये आपके दिमाग में दर्ज हो जाने चाहिए। ये 2018 के आंकड़े हैं, देखिए 19-20 के तो अभी आएंगे, 2018 के वह यह है कि हमारी जो GDP है आप देखिए उस GDP में लगभग 9% जो कंट्रीब्यूशन है वो टूरिज्म का है, 9% राइट। और हम जितना भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं जो रोजगार की जो स्थिति है उसमें लगभग 8% एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म के फील्ड में मिला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यूरोपीय देशों को देखेंगे जो खासकर यूरोपियन यूनियन है तो वहां तो टूरिज्म का बहुत बड़ा रोल है, 12% तक उनके टोटल GDP में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए आपने देखा है कि कोरोना से वो पूरा का पूरा यूरोप कितना त्रस्त हो गया था और जैसे ही थोड़ी सी स्थिति बेहतर हुई उन लोगों ने फटाफट अपने टूरिज्म को ओपन अप करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो टूरिज्म के बिना अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं सकते। और डेफिनेटली यही स्थिति कमोवेश भारत की भी है। फ्रेंड्स कल हम लोगों ने अपराध के बारे में बात की थी कि भारत में जो अपराध की स्थिति है, खासकर विकास दुबे के संदर्भ में, वो किस तरीके की है। आज मैं अपराध पर आपको दो आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं। एक तो दैनिक भास्कर का छोटा सा एडिटोरियल कमेंट है, इसके लास्ट में उन्होंने एक और घटना की चर्चा की है जो बिल्कुल अभी नई घटना ही हुई है तमिलनाडु में। बीच बीच में इसके बारे में खबरें आ रही थी कि किस तरीके से एक थाने में बकायदे बाप और बेटे को पुलिस वालों ने वसूली न करने के कारण मारा पीटा और इससे उनकी मृत्यु हो गई। और उसको लेकर के जब हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए तो जांच के लिए जब टीम गई तो थाने में उनको डराया धमकाया गया, वार्निंग दी गई कि अगर यहां रहोगे तो मार डाले जाओगे। वो टीम डर के मारे भाग गई। और फिर बाद में आप देखिए कि हाईकोर्ट ने, आप सोच करके देखिए कि मजबूरन उस पूरे थाने का चार्ज जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दिया। ये बहुत चौंकाने वाली घटना है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अब उस थाने को संभालेगा। सोच करके देखिए कि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कहां जा रही है, कहां पहुंच रही है। अगर इसी तरह से चलती रही तो आखिरी स्थिति क्या होगी। ठीक इसी तरह से मैं आपको एक एडिटोरियल आर्टिकल भी प्रोवाइड कर रहा हूं जो प्रकाश सिंह जी का है, जो अपने आप में आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी रहे हैं। इसमें इन्होंने कुछ बहुत अच्छे आंकड़े दिए हैं और बहुत अच्छा सवाल उठाया है। आंकड़े तो देखिए आप देख लीजिएगा, इसमें जो आंकड़े दिए हैं उन्होंने स्पेशली उत्तर प्रदेश के अपराधों के आंकड़े दिए हैं। राष्ट्रीय आंकड़े उन्होंने हथियारों को लेकर के दिए हैं कि यह माना जा रहा है कि भारत में लगभग 4 करोड़ हथियार हैं, लेकिन लाइसेंस केवल 1 करोड़ है, तो ये 3 करोड़ अवैध हथियार हैं, बिना लाइसेंस के हैं। ये एक चिंताजनक बात है। फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, उसमें कितने एमएलए हैं और उनमें से कितने अपराधी हैं, कितने प्रतिशत अपराधी हैं, उसके बारे में आप देख लीजिएगा। 36% अपराधी उन्होंने बताए हैं। तो ये जो आंकड़े हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है इसलिए उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा महत्व रखते हैं, अगर वो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो डेफिनेटली हमारे संसद में जो अपराधी पहुंचे हुए हैं उनके भी आंकड़े समय समय पर आते रहते हैं, वो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इन्होंने जो सबसे बड़ा जो सवाल उठाया है उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर के, उसे ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने हमारे समाज के जो अंग हैं उन पर सवाल उठाया है, और यह आपको मालूम होना चाहिए। उन्होंने समाज पर सवाल उठाया है। अब आप देखिए कि समाज पर कैसे सवाल उठाया। अब जब समाज, क्योंकि वोट हम देते हैं, समाज देता है, राइट? तो समाज पर सवाल उठाया है, न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाया, और सब अपराध से जुड़े हुए हैं। न्याय व्यवस्था पर इसलिए कि इन पर 60-60 मुकदमे चल रहे हैं। मंत्री की घुस करके इन्होंने हत्या कर दी विकास दुबे ने, लेकिन उन्हें सजा नहीं हो पाई। लंबित पड़े रहते हैं मामले, 90% मामले तो आप यूं कह लीजिए कि छूट ही जाते हैं, थोड़े से लोगों को सजा हो पाती है और कितनों को तो न्याय ही नहीं मिल पाता। यह न्याय व्यवस्था पर सवाल है। फिर है सिविल एवं पुलिस सेवा। सिविल आप देखिए कि किस तरह से जो हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो किस तरीके से अपराध से गठजोड़ बनाए हुए है, क्योंकि उन्हें अपना हित दिखाई देता है, अपना प्रमोशन, अपना ट्रांसफर पोस्टिंग। और फिर जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था को तो आप देख ही रहे हैं कि थाने से ही सूचना गई थी कि भैया तुम्हारे यहां दबिश दी जाने वाली है, कुछ लोग आने वाले हैं, तुम तैयार हो जाओ। पुलिस प्रणाली की ये भी है कि उनके पास हथियार नहीं। सोचिए कि जो पुलिस वहां गई थी उसके पास हेलमेट नहीं है, उसके पास हथियार तक नहीं है, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, जबकि जिन हथियारों से उन पर हमला किया गया है वो अत्याधुनिक हथियार है। तो ये भी सवाल उठता है कि उनके पास कहां से इतने अत्याधुनिक हथियार आ गए। तो इस तरह से पुलिस प्रणाली पर भी आता है। और फिर राजनीतिक व्यवस्था तो है ही, क्योंकि बिना राजनीतिक सपोर्ट के आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। तो ये जो अपराध है, जो अभी खासकर उत्तर प्रदेश में जो घटना घटित हुई है, इसको लेकर के आप 4-5 कोण से, जिनकी चर्चा मैंने अभी की है, जिसमें समाज है, न्याय व्यवस्था है, सिविल यानी प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था है और राजनीति है, इन सभी कोणों से विचार कर सकते हैं और किया जाना चाहिए। क्योंकि जो अपराध और भ्रष्टाचार, ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये आपके जनरल स्टडीज मेंस के 2nd में भी है, 3rd में भी आर्थिक अपराध उसमें आता है, और 4th में तो है ही, क्योंकि उसका संबंध है आपके इंटीग्रिटी और एथिक्स से है। तो मुझे लगता है कि यह एक ऐसी घटना है जिस पर आपकी बकायदे पर्याप्त नजर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वो है जनसंख्या वृद्धि दर। दरअसल अभी एक रिपोर्ट आई है, खासकर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, उन्होंने 2018 के आधार पर अपनी रिपोर्ट दी है, जो खासकर जनसंख्या को लेकर के उन्होंने जो सर्वे किया है उनके कुछ आप यूं कह लीजिए कि निष्कर्ष हैं। ये जो निष्कर्ष हैं जनसंख्या के संबंध में बहुत ही ज्यादा आशा पैदा करने वाले निष्कर्ष हैं। देखिए भारत की समस्याओं के बारे में जब बात होती है तो यही कहा जाता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या यहाँ की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, इसके कारण हम विकास का लाभ नहीं उठा पाते। अब आप देखिए कि जब कोरोना की बात हो रही तो बहुत अधिक जनसंख्या है, बहुत सघन बसा हुआ है, हेल्थ फैसिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा देश गरीब है, देश गरीब क्यों है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो बात जनसंख्या पर आकर के टिक जाती है। और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय अभी से नहीं पिछले 50-60 सालों से लगातार किए जा रहे हैं, अब उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। और अभी जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जिसको SRS कहते हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो यह दी है कि लगभग 13 राज्यों में जनसंख्या पर नियंत्रण ही नहीं बल्कि गिरावट, जनसंख्या की जो दर है वह गिरनी शुरू हो गई है, जनसंख्या की दर गिरनी शुरू हो गई है 13 राज्यों में। और यह बहुत बड़ी बात है ना, जब हम कहते जनसंख्या की दर गिरनी शुरू हो गई है तो उसका मतलब क्या होता है? एक शब्द आपके दिमाग में मौजूद रहना चाहिए, TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि यदि एक दंपत्ति है स्त्री पुरुष हस्बैंड वाइफ, उनके अगर बच्चे पैदा होने की जो दर है 2.1 है तो 2.1 पर जनसंख्या जो अभी है वही बनी रहेगी, 2.1 से अधिक है तो जनसंख्या जो अभी है उससे ज्यादा होगी, और 2.1 से यदि दर नीचे है तो जनसंख्या में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। तो जो 13 राज्य हैं इनमें जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो TFR से कम हो गई है, तो ये एक अच्छी खबर आप इसे मान सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ है उसमें भी बकायदे उन्होंने फाइंडिंग्स दी हैं कि एक तो हमारी जो साक्षरता की दर है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और विशेषकर महिलाओं के बीच में, जो जनसंख्या नियंत्रण के जो संसाधन हैं उस तक लोगों की पहुंच होती चली जा रही है, और फिर जो पूरा हमारा सामाजिक आर्थिक जो विकास हो रहा है डेफिनेटली इसका सीधा प्रभाव जनसंख्या नियंत्रण पर पड़ता ही पड़ता है। और दोस्तों इसमें एक दो बात उन्होंने और भी कही है, और वो ये है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो एवरेज 2.2 के आसपास चल रहे हैं, मतलब वो TFR से बस थोड़े से ही नीचे हैं। इसमें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है और ओडिशा है, ये भी लगभग लगभग इसी के आसपास है। गुजरात भी 2.1 के आसपास पहुंच गया है। इस तरह से कुछ राज्यों के बारे में एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है, और खासकर यह रिपोर्ट आज के इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल कमेंट्स के रूप में मौजूद है, वह मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं। आप इसे और भी ध्यान से देखेंगे तो अपने लिए कुछ अच्छे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। यहां जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है वो ये है कि अब जो हमारे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, इसको देखते हुए अब सरकार को अपनी नीतियां बनानी चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। इसका मतलब है कि जब भी नीतियों से संबंधित मेन एग्जामिनेशन में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आप इस पर अपने विचार बताइए, तो आपके दिमाग में भारतीय जनसंख्या के स्वरूप में अब जो परिवर्तन की शुरुआत हो गई है वह रहनी चाहिए। जैसे सामाजिक कल्याण की अगर आप बात करेंगे तो आप देखिए कि सीधी सी बात है कि आगे चल करके हमारी जनसंख्या में वृद्ध लोगों का अनुपात बढ़ेगा, तो आपको उसे ध्यान में रखना होगा, राइट। तो दोस्तों ये एडिटोरियल कमेंट्स आप लोग देख लीजिएगा, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। जो दूसरे आर्टिकल्स एडिटोरियल कमेंट्स हैं वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब अपने अपने हिसाब से उनका उपयोग करेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, अंचिता मेघ राजानी भोपाल से, आकाश यादव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, दीक्षा मेघवाल उदयपुर से, प्राची दिमरी, अजय अग्निहोत्री बदायूं उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद रफी और मोहित बोस, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।